ओम शांति। बाबा ने हम सबको अचानक का पाठ पढ़ाया है। अभी अभी हमको आदेश मिला कि क्लास कराओ। बहुत दिनों से इस क्लास से मिलना नहीं हुआ है। ड्रामानुसार पूरे विश्व के अंदर इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं। तीसरा साल है ये। चारों तरफ अपने सभी सेवा केंद्रों पर भी योगा के लिए, योग डे के लिए बहुत अच्छी तैयारियां हैं और बहुत जगह कार्यक्रम चल रहे हैं। आज हमारी दादी जी भी दिल्ली पहुंच गई। मालूम है सबको, जानकी दादी जी दिल्ली पहुंच गई। कल श्रीपोर्ट के ऑडिटोरियम में वीआईपीज के लिए योग का कार्यक्रम है। संडे है 18 तारीख और 21 तारीख को लाल किले पर सवेरे 6 से 8 बजे तक लक्ष्य रखा है कि 50,000 ब्राह्मणों की सभा योग करेगी। तो उसके लिए दादी जी को खास चार्टर्ड प्लेन से लेकर के गए। तो ये भी बाबा ने हम सबको बेहद की सेवा का गोल्डन चांस दिया है। दुनिया में तो योग के नाम से क्या क्या कर रहे हैं हम सब जानते हैं। शारीरिक व्यायाम, एक्सरसाइज, प्राणायाम, वो भी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। लेकिन अधिकतर देखा जाता है शरीर की बीमारियों का कारण मन है। मन के अंदर अगर तनाव है, मन उलझा हुआ है, टेंशन में है, तो कितने भी एक्सरसाइज करा दो, कितने भी आसन करा लो, लेकिन शरीर कैसा होगा। इसलिए हम सबको बाबा ने सहज योग, राज योग सिखाया है, जिससे मन बहुत बहुत शक्तिशाली, समर्थ बन जाता है। फिर शरीर की बीमारियां भी अपने आप मन की शक्ति से ठीक हो जाती। और अगर कोई एक्सरसाइज, प्राणायाम, आसन की जरूरत भी होती है तो भी मना नहीं है, करते हैं ना सभी। थोड़ा समय भी शरीर को ऑक्सीजन देने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज किया, कुछ समय आसन या प्राणायाम किया या पैदल किया तो शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन आत्मा सदा शक्तिशाली रहे, विकारों की अनेक बीमारियों से मुक्त रहे और आने वाली सभी परिस्थितियों को सहज व पार कर सके, उसके लिए राजयोग का अभ्यास हम सभी रोज करते हैं। राजयोगी आत्माएं, क्या आसन बाबा ने हमको दिए हैं, कितने आसन हैं, क्योंकि योग के लिए आसनी स्थान और स्थिति का महत्व होता है। बिना आसन के योग नहीं करते हैं। आजकल वो चटाई आसन देते हैं, लेकिन बाबा ने हम सबको एक गुफा दी है। कौन सी? भ्रकुटी की गुफा में बैठ जाओ। राजयोगी आत्माएं इस भ्रकुटी की गुफा में बैठ करके एक रस स्थिति का आसन लगा करके परमात्मा के साथ आत्मा का मिलन हो, इसका नाम योग है। तो जब हम भ्रकुटी की गुफा में अपने स्वस्वरूप में स्थित होते हैं, आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं, तो आत्मा की जो चैतन्य शक्ति मन और बुद्धि है, इस मन और बुद्धि से हम उस पिता परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ लेते हैं। यही योग है, यथार्थ विधि है जिससे उस पिता की सर्व शक्तियां हम ग्रहण कर लेते हैं। वो सर्व समर्थ है, सर्व शक्तिमान है। तो जब आत्मा कुछ सेकंड के लिए भी मन और बुद्धि को एकाग्र करके परमात्मा का ध्यान करती है, उसके साथ संबंध जोड़ती है और रिलेशन के आधार से कनेक्शन, संबंध के आधार से अगर कनेक्शन जुटता है तो सर्व प्राप्तियां स्वतः होने लगती हैं। जो आज के मानव की आवश्यकता है, मन को शांति हो, सुख हो, आनंद हो, उसके लिए राजयोग का अभ्यास बहुत बहुत आवश्यक है। इसके लिए दूसरा योगी के लिए दिखाते हैं, जो तपस्या करते हैं योगी लोग, वो वृक्ष के नीचे बैठ करके करते हैं। कोई भी तपस्वी जिसने सिद्धि प्राप्त की, उसके लिए वो तपस्या किसी वृक्ष के नीचे बैठकर करता था। सुना होगा गौतम बुद्ध की कहानी में, अन्य धर्मों में भी जितने धर्म स्थापक हुए उन्होंने तपस्या के बल से सिद्धि प्राप्त की, और वो एक वृक्ष के नीचे बैठ करके। तो हम सब राजयोगी किस वृक्ष के नीचे बैठे हैं? बाबा ने हम सबको कल्प वृक्ष का ज्ञान दिया है। कल्प वृक्ष की जड़ों में, तने में बैठ करके अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करके पूरे वृक्ष की नॉलेज का चिंतन करते हैं। इसकी आदि क्या है, मध्य क्या है, अंत क्या है, कैसे इस वृक्ष की उत्पत्ति हुई, पालना हुई, फिर विनाश होता है और फिर इस वृक्ष की पुनरावृत्ति होती है। तो पूरे वृक्ष का ज्ञान बुद्धि में रख करके फिर हम इस वृक्ष को परमात्म शक्तियों का जल देते हैं। ये भी एक तपस्या है, योग है। तीसरा, आपने देखा होगा जब कोई तपस्या के लिए बैठता है तो एक कोई खाल को, बाघ की, शेर की खाल को बिछा करके उस पर बैठ करके योग करता, तपस्या करता है। ये भी हमारी निश्चिंत स्थिति की निशानी है। अगर अच्छे योगी योग अभ्यास में अच्छी स्थिति बनानी है तो उसके लिए बहुत निश्चिंत स्थिति चाहिए। कोई भी चिंता लेकर के, चिंतन लेकर के योग में अगर बैठेंगे तो मन और बुद्धि भटक जाएगा, योग लगेगा नहीं, मन एकाग्र नहीं होगा। इसलिए निश्चिंत स्थिति का, निर्भय स्थिति का आसन हम सबको बाबा ने दिया है। उस स्थिति में स्थित होकर के अपनी सब चिंताएं, सब जवाबदारियां बाबा को अर्पित करके हल्के हो जाओ। चौथा आसन दिखाते हैं योगी का, कमल आसन। देखा होगा कमल का फूल, उस पर एक योगी बैठा हुआ है। अब फूल के ऊपर कोई तपस्या की जा सकती है क्या? एक प्रतीक चिन्ह है कि कितनी भी बड़ी फैमिली है, बहुत झंझट है, पानी है, तमोगुणी वातावरण है, लेकिन उसमें भी योगी कमल आसन पर विराजमान है, न्यारा है, प्यारा है। उसको कोई भी वातावरण का प्रभाव नहीं आता, वो इतना हल्का है, इतना लाइट है, जो फूल पर भी बैठ सकता है। ये प्रतीक चिन्ह है। तो हम सबको बाबा ने सब बोझों से हल्का किया है। कोई है बोझ? अगर राजयोगी बच्चे भी कहें मेरे ऊपर ये बोझ है, ये बोझ है, तो योग क्या करेंगे? इसलिए कोई भी बोझ है तो बाबा को दे दो। संस्कारों का भी बोझ नहीं चाहिए, जवाबदारियों का भी बोझ नहीं चाहिए। सब जवाबदारियां बाबा को अर्पित करो, हल्के हो जाओ। जब तक कोई ने हल्की ड्रेस नहीं पहनी है तब तक वतन का सैर नहीं कर सकता, बाबा के पास नहीं जा सकता है। तो हम सब बाबा के बच्चों को बाबा ने लाइट की ड्रेस दी है। ये शरीर तो है हमारी ड्रेस, आत्मा की ड्रेस शरीर है, लेकिन इस शरीर में रहते हुए भी हम अभ्यास करते हैं। मैं एक चैतन्य आत्मा, मेरे चारों लाइट का सुंदर शरीर है, जितने हम शुद्ध संकल्पों में शुभ संकल्पों में रमण करते हैं उतना हमारे चारों ओर बहुत सुंदर ओरा लाइट का तैयार होता है और उस लाइट के शरीर से हम इस साकार वतन को क्रॉस कर जाते हैं। बुद्धि बल से आत्मा शरीर में ही है लेकिन बुद्धि बल से इस साकार वतन को पार करके अपने लाइट के वतन में आकारी वतन में जाती है और वहां से बैठ करके फिर विश्व को सकाश देती शांति की शक्ति की किरणें देती है। तो ये भी एक सुंदर आसन है जो हम सब इस साकार वतन से मूल वतन और सूक्ष्म वतन की यात्रा करते हैं। ये बहुत सुंदर ड्रिल है, जैसे उसमें ड्रिल कराते हैं एक्सरसाइज कराते हैं ऐसे ही हम सब आत्मा मन से एक ड्रिल करते हैं कि अभी अभी साकार शरीर में है, इस साकार शरीर को छोड़ा और लाइट के शरीर में चले गए और लाइट के शरीर से उस मूल स्थिति में अपने निजी बीज स्थिति में बीज रूप की स्थिति में बाबा के साथ बैठ गए। जैसा बाबा है निराकार ज्योतिर्बिंदु सर्व आत्माओं का पिता हम सब का शिव परमात्मा, उसके साथ जितना हम उस स्थिति में स्थित होकर के बैठते हैं तो उसकी शक्तियों का प्रवाह आत्मा को शुद्ध और पावन बना देता और जितना हम पावन बनते जाते हैं तो उस पावन स्थिति के आधार से फिर हम पूरे ग्लोब की सेवा करते हैं। तो योग अभ्यास के अंदर कई प्रकार की स्थिति और आसन बाबा ने हम सबको सिखाए हैं और उसी आसन पर बैठ करके जब मन और बुद्धि एकाग्र हो जाता है। योग के लिए तीन चीजों की बहुत जरूरत है, सहज योगी जीवन उसके लिए सबसे पहले चाहिए लगन, जिसके साथ हम मिलन मनाना चाहते हैं, जिससे हम शक्ति लेना चाहते हैं उसकी पहचान और पहचान के साथ उससे बहुत गहरा संबंध और स्नेह। जब उसके साथ संबंध और स्नेह जुट जाता है लगन बढ़ जाती है तो उसकी याद योग माना याद बहुत सहज रीति से रहती है, चलते फिरते कर्म करते खाते पीते उसकी याद बनी रहती है क्योंकि हम हैं ही उसके। तो एक बहुत सुंदर अभ्यास उसके लिए पहली धारणा है लगन की अग्नि। जितना हम सब के अंदर बहुत स्नेह है परमात्मा के साथ लगन है उतना उसके साथ हम जुड़ करके उसके साथ कनेक्ट रह सकते हैं। दूसरी चाहिए संकल्पों की एकाग्रता। अगर संकल्प बहुत बह रहे हैं इधर उधर, वृत्तियां चंचल हैं भटक रही हैं स्थिर और एकाग्र नहीं है तो योग में अच्छे अनुभव नहीं होते। बैठेंगे आधा घंटा पौना घंटा लेकिन कुछ मिनट भी एकाग्र होकर के उसकी शक्तियों को ग्रहण नहीं कर पाते। इसलिए जरूरी है मन की एकाग्रता और एकाग्रता आती है जब वृत्तियां बहुत स्थिर हो जाती हैं, चंचलता समाप्त हो जाती है क्योंकि वृत्तियां बहुत चंचल हैं। एक सेकंड के लिए कोई पूजा भी करता है भक्ति भी करता है तो सामने भगवान की ठाकुर जी की मूर्ति है, आरती उतार रहा है, घंटी बजा रहा है। हम एक जगह पर जब पढ़ते थे ना स्कूल में तो एक मंदिर में रहते थे, मंदिर में पुजारी बड़ा बुजुर्ग था और सवेरे सवेरे वो 4-4:30 बजे उठ करके तैयार होके नहा धो करके आता था मंदिर के अंदर। तो हमारा बाजू में कमरा था तो सवेरे सवेरे आकर के मंदिर की आरती करता था, कीर्तन करता था, कुछ न कुछ मंत्र जैसे जाप करते हैं ऐसे आरती उतारता जाता मंत्र जापता है। लेकिन उसी समय अगर कोई जानवर कुत्ता आ जाए कोई आ जाए एकदम से गुस्सा हो जाता था, वो आरती उधर रह गई और उसका गुस्सा फूट गया। एक तरफ कहाँ एक तरफ राम राम जप रहा है मंत्र जप रहा है और दूसरी तरफ क्रोध में आकर के आरती एक हाथ में है और दूसरे हाथ से डंडा उठा के मार रहा है उसको। तो मैं हंसता था, हम कहते थे इसका मन तो एकाग्र नहीं है, अगर मन एकाग्र नहीं है तो ये क्या आरती कर रहा है, क्या भगवान का ध्यान कर रहा है, ये तो दिखावा कर रहा है। तो आजकल की पूजा पाठ भी ऐसे ही लोग करते हैं, कर्म कांड बना करके, जैसे पूर्वज करते आए हैं, जैसे बड़े करते हैं, ऐसे हम भी कर रहे हैं। लेकिन उसमें मन की एकाग्रता है, स्थिरता है, शुद्धता है, वो भावना है, अगर वो है तो सचमुच उससे कुछ प्राप्ति होगी, जीवन कुछ शुद्ध बनेगा, कुछ शक्ति मिलेगी। सिर्फ दिखावा है, कर्म कांड है, तो करे या न करे क्या फायदा उससे। तो हम सबको बाबा ने मन की बुद्धि की एकाग्रता स्थिरता सिखाई है। और तीसरी चाहिए संकल्पों में बहुत दृढ़ता। दृढ़ता भी तपस्या है। अगर संकल्प दृढ़ है कि हमें मिलन मनाना ही है, हमें वो शक्ति लेनी ही है, और एक बाबा के साथ मिलन मना के भगवान की शक्तियां लेनी, तो जब हम बाबा को भगवान कहते हैं तो भगवान हमारा बाबा है, पिता है, और उसके साथ हम दृढ़ता के साथ मन को एकाग्र कर लेते हैं तो वो शक्तियां हमारे अंदर आती जाती है। और वृत्तियों की एकाग्रता के लिए जरूरी है व्रत। व्रत लोगे तो वृत्तियां एकाग्र होंगी। जब तक कोई ने व्रत नहीं लिया, आज व्रत क्या रखते हैं, उपवास रख लेते, भोजन नहीं करेंगे, एक टाइम भोजन नहीं करेंगे या तीनों टाइम नहीं करेंगे। कुछ दिन पहले मेरे को एक फोन आया, कहता है एक हमारे पास बुजुर्ग माँ है, बच्चा फोन करता उसका, उसकी आयु करीब 80 साल है, लेकिन भक्ति की आदत पड़ी हुई है वो निर्जल व्रत रखने की। ज्ञान में भी जाती है, मुरली भी बाबा की सुनती है, लेकिन आज एकादशी है तो कहती है मैं व्रत रखूंगी और निर्जल व्रत रखूंगी। मुझे डर लग रहा है, ये माताजी इतनी बड़ी आयु में पानी नहीं पिएंगी, इतनी गर्मी पड़ रही है, पता नहीं बचेंगी शाम तक कि नहीं बचेंगी, इसलिए आप कुछ करो, आप इनको समझाओ, क्योंकि ये ज्ञान में आती हैं। तो हमने कहा माताजी की भावना है, आप छोड़ो ना, भावना का भाड़ा भगवान देता है, करने दो, क्या फर्क पड़ता है। कहता नहीं मुझे डर लग रहा है, ये तो एकदम ऐसी स्ट्रिक है, पानी जब देंगे तो भी नहीं पिएगी, चाहे बेहोश हो जाए, निर्जल व्रत। लेकिन बाबा ने हम सबको ऐसा हठ योग नहीं सिखाया है, ऐसी हठ क्रियाएं नहीं, ऐसा उपवास नहीं सिखाया। ऊपर रहो, बाबा के साथ रहो, उपवास करो, लेकिन विकारों का, बुराइयों का, जो चीजें काम की नहीं उनको त्यागो, जो शरीर को चलाने के लिए जरूरी है वो तो आवश्यकताएं शरीर की पूरी करनी ही पड़ती हैं, अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती। तो ऐसा अगर व्रत कोई ने रख लिया और बेहोश हो गया तो भी जरूरी नहीं है। इसलिए बाबा ने हम सबको व्रत सिखाया है, एक के सिवाय और कोई दूसरा याद ना आए, एक व्रत्ता, वृत्ति में एक बाबा दूसरा न कोई। बाबा के साथ इतना स्नेह है हर बात में, कभी कभी कोई काम कर पड़ता है ना तो किसी न किसी देहधारी की याद आ जाती है, वो फलाना भाई होता तो मदद कर देता, वो फलानी बहन होती तो मदद कर देती, लेकिन बाबा भूल जाता। जो एक वृत्ता आत्माएं हैं वो कोई भी बात आएगी पहले नंबर में बाबा को याद करेंगे। बाबा सर्वशक्तिमान है, सर्व समर्थ है, हजार भुजाओं वाला है, वो हमारे साथ है, इसलिए पहले संकल्प में बाबा की याद आनी चाहिए तो वृत्तियां कंट्रोल में आ जाए। ये व्रत है हमारा कि पहले नंबर में बाबा की याद बनी रहे, एक व्रत्ता होकर के हम रहें। एक बल एक भरोसा, एक से सब कुछ संबंध जोड़ करके उसके बल के आधार से चलना, और एक में विश्वास भरोसा रख करके चलना। बुद्धि भटक गई अगर, कोई दूसरे में भरोसे हो गए, किसी के अंदर भावना बैठ गई, तो बाबा मदद नहीं करता है, छोड़ देता है। तो वृत्ति की एकाग्रता के लिए एक वृत्ता और एक बल एक भरोसा, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बात करूं, अगर ये मन की भावनाएं बन गई तो बाबा भूलेगा नहीं, सदा योग लगा रहेगा, सदा उसके साथ बुद्धि की तार जुड़ी रहेगी। बाबा गाइड करेगा कि बच्चे का प्यार कितना है, एक के साथ ही खाना चाहता। आज भी बाबा ने क्या कहा था मुरली के अंदर, भले खाता नहीं हूं लेकिन तुम बच्चे प्यार से खिलाओ तो मैं वासना जरूर ले लेता हूँ। खिलाते हो सभी प्यार से, दृष्टि दे करके बाबा विधि सिखाता है, पहले भोजन को दृष्टि दो, बहुत स्नेह से उसको बाबा की याद में बाबा को ऑफर करो, बाबा आप खिलाने वाले, आप तो दाता हो, भले खाते नहीं हो लेकिन दृष्टि तो डाल दो। तो प्यार से अगर हम भोजन पर दृष्टि डालते हैं, बाबा की दृष्टि उस पर डलवाते हैं, तो भोजन भी शक्तिशाली हो जाता है। क्यों कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, मन की एकाग्रता के लिए भोजन की शुद्धता, स्थूल भोजन में भी शुद्धता चाहिए, लेकिन साथ साथ जो आज मन की भोजन बना हुआ है, जो हम खिला रहे हैं इसको, जो हम दृश्य देख रहे हैं, क्या क्या मन के भोजन आज बन गए हैं, टीवी है, इंटरनेट है, मोबाइल है, आज के साधन देखो क्या क्या सारा दिन देखते रहते हैं लोग। 40% से अधिक लोग अपना टाइम जो है ना इंटरनेट में मोबाइल के वीडियो देखने में गंवा रहे हैं, और सारा मन का प्रदूषण उसी से आ रहा है। टीवी तो शायद कम हो गई है, टीवी से भी ज्यादा इंटरनेट सबके घर में घुस गया जाकर, और इतने गंदे गंदे सीन, इतनी पिक्चर्स गलत गलत उसमें दिखाई जा रही हैं, जो मन को प्रदूषित कर देती हैं। अगर मन प्रदूषित है, मन ऐसी चीजों का इंटरेस्ट रखता है, देखता है बार बार, तो उस पर उसकी छाप पड़ जाती है, वो कभी भी एकाग्र नहीं हो सकता है, उसकी वृत्तियां सदा चंचल जाएंगी। इसलिए बाबा कहते हैं अगर वृत्तियों को शुद्ध और एकाग्र करना है तो इसके लिए इसको देखना बंद कर दो, ऐसी गंदी चीजें नहीं देखनी है जो अश्लीलता को जन्म दें, ऐसे दृश्य नहीं देखने हैं, ऐसे कोई भी साइंस के साधन हमें कुछ भी दे रहे हैं लेकिन इसकी परहेज मन की, तब शुद्ध हो जाएगा और वृत्तियां हमारी चंचलता छोड़ देंगी, नहीं तो वृत्तियां कभी भी स्थिर और एकाग्र नहीं हो सकती। इसलिए कोई भी ऐसा ना स्थूल में भोजन, ज्यादा तेज गरम मसाले ऐसी चीजें तमोगुणी पदार्थ खाएंगे तो क्या होगा, मन उत्तेजित हो जाएगा, सब शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। मम्मा की एक बात सब याद रखना, मम्मा का मास चल रहा है, मम्मा हम सबको एक बहुत सुंदर ट्रेनिंग देती थी, कहती थी देखो 6 मास तक तुम बहुत अच्छा पुरुषार्थ करो, 6 मास अमृत वेला रोज करो, मुरली क्लास रोज करो, अच्छे संग में रहो, ब्रह्मा भोजन करो, सब शक्तियां जमा करने के जितने स्रोत हैं, जितने साधन हैं, सब अपनाओ, खूब अच्छी तरह से शक्तिशाली बन जाओ। लेकिन अगर एक दिन कोई कारण से आवेश आ गया, गुस्सा आ गया, तो 6 मास की जो की कमाई है वो 1 सेकंड के गुस्से से क्या होगी, खत्म हो जाएगी, धुल जाएगी। कितना अटेंशन रखने की जरूरत है, अगर हम अपने मन की शक्तियों को एकाग्र करना चाहते हैं, वृत्तियों को बचाना चाहते हैं, तो कुछ एक सिद्धांत बना लिए जाएं कि हम कभी भी आवेग में नहीं आएंगे, कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कितनी भी गलत हमारे सामने कोई ऐसी परीक्षा के रूप में परिस्थिति आ जाए, लेकिन दो हमारे बड़े शत्रु हैं, एक आवेग और दूसरा आवेश। आवेश जो है क्रोध बोल के रूप में बाहर आ जाता है, फट से गुस्सा आ जाएगा, और फिर कोई की भी मर्यादा नहीं रहती, किसी के लिए भी कोई भी शब्द निकल जाते, बड़ों के लिए भी निकल जाएंगे, इतने सब साथ देने वाले, स्नेह देने वाले, सहयोग देने वाले, गुस्सा आ गया तो बोल कंट्रोल में नहीं रहता और कुवचन कटु वचन निकल जाते और संबंधों में बहुत गहरी दरार पड़ जाती। 1 सेकंड का जोश आवेश कंट्रोल नहीं कर पाए और सब संबंध जो अच्छे भले पारिवारिक जीवन के चल रहे थे वो सब समाप्त हो जाते, फिर पछतावा होता है, मन भटकता है, कहते क्या करूं, चाहता नहीं था ऐसा हो गया। और आवेग जब आता है तो व्यक्ति भूल जाता है कि मेरी नियम क्या है, मर्यादाएं क्या है, ईश्वरीय लॉज क्या है, फैमिली के लोक लॉज क्या है। आवेग आया तो कितने गलत काम, जितने बलात्कार हो रहे हैं, हिंसाएं हो रही हैं, व्यक्ति उस आवेग को, उस जोश को روک نہیں پاتا, اور جب روک نہیں پاتا ہے تو کچھ نہ کچھ غلط کر بیٹھتا ہے. کرنے کا کچھ ایک دو منٹ ہوگا لیکن اس کے بعد سدا کال کے لیے پچھتانا. اس لیے اگر من کی وتوں کو استھر رکھنا ہے تو پہلے اپنے آویگ اور آویش پر کنٹرول رکھو. اور یہ پیدا کرنے والی جتنی چیزیں ہیں, جو چیزیں اس کو اتپن کر رہی ہیں, اس پر دھیان دو. کیوں آ رہا ہے آویگ, کیوں آویش آتا ہے, کیا ضرورت ہے؟ کیا ہم آتما شانت سوروپ پوتر سوروپ پریم سوروپ آتمائیں اس سوروپ میں بابا کی شکتیاں لیں؟ پیار کے ساگر کے کرنوں کے نیچے بیٹھ جاؤ, شانتی کے ساگر کے کرنوں کے نیچے بیٹھ جاؤ. یوگ کیا ہے؟ یوگ کوئی رام رام من میں کوئی بھٹکنا چنتن کرنا ایسا نہیں ہے کہ چنتن کرتے رہو, لیکن ایکاگر ہو کر کے سوستھ روپ میں استھت ہوتے ہی بابا کی وہ شکتیاں شانتی کی پریم کی سکھ کی آنند کی جب ہمارے اندر آتی ہیں, تو اگر وہ شانتی کا ساگر ہے تو ہم آتمائیں شانت سوروپ ہیں, وہ پیار کا ساگر ہے تو ہم پریم سوروپ ہیں, وہ آنند کا ساگر ہے تو ہم آنند سوروپ ہیں. یہ یوگ ہے یتھارتھ ودھی سے کرنے سے. آتما اس سوروپ میں استھت ہوتی جاتی ہے. اگر یوگی کی کرم اندریاں انگ انگ شیتل نہیں ہیں, یوگی ہے انگ انگ شیتل نہیں ہیں, کہتے ہیں یوگی وہ ہے جس کے انگ انگ شیتل ہیں, یوگی وہ ہے جس کے انگ انگ سگندھت ہیں. تو ہم سب راج یوگی بچے یہ چیلنج کر سکتے ہیں کہ ہم سب انگ انگ شیتل والے ہیں, شیتل کایا والے یوگی ہیں. کبھی بھی اتیجنائیں نہ آئیں, کبھی بھی اہم اور بہم کے چکر میں نہیں آنا. یہ دو چکر بڑے خطرناک ہیں. کوئی ویکتی تھوڑا بھی پوسٹ پوزیشن پا لیتا ہے, کوئی تھوڑا بھی اچھا کام کرتا ہے, کوئی تھوڑی مہیما ہو جاتی ہے, پھٹ سے اس کو اہم آ جاتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں, دکھاوا دکھاتا ہے. اگر تھوڑا بھی اس کو رسپیکٹ نہیں ملا, اس کے پد پوزیشن کے آدھار سے کوئی اس نے عزت نہیں دی کسی نے, پھٹ سے جوش آئے گا, غصہ آئے گا, وہ کام چھوڑ دے گا, کہے گا مجھے تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے, مجھے کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے. یہ اہم بھاؤ بہت جلدی اپمان کی فیلنگ کراتا ہے, اور جس کو تھوڑی بھی اپمان کی فیلنگ آتی ہے اس کا من کبھی بھی استھر نہیں ہو سکتا, یوگ نہیں لگ سکتا. دھیان دینا, بابا کہتا مان اپمان نندا استھتی سکھ دکھ جے پراجے سب میں بہت سمان استھتی یوگی کی ہوتی ہے. اگر یوگی کی استھتی پھٹافٹ کوئی نے مہیما کی بہت خوشی میں آ گیا, کوئی نے تھوڑی گلانی کی ایک دم مرجا گیا, یوگ لگے گا؟ یہ یوگ ایسا ہے جس کے اندر ہر پرستھتی میں سمان استھتی بن جائے. ہوتی ہے, سنسار ہے, ناٹک ہے, اتنے سارے پارٹ دھاری ہیں, کوئی کی تھوڑی ایڈسیا ہوگی پھٹ سے کہیں نہ کہیں جا کے گلانی کر دے گا, ادھر کی ادھر لگا دے گا, پھٹ سے اپمان کر دے گا. کوئی نے آ کے سنا دیا اور سنی سنائی باتوں پر ہم نے چنتن کر لیا, پھٹ سے ہماری پارا ڈاؤن ہو گیا. یہ بھی اہم بھاؤ کی نشانیاں ہیں. اس پر چنتن کرنا کتنا آج ویکتی کو اہم ہے. تھوڑا بھی اگر اپمان ہو گیا, تھوڑا بھی سمے پر ساتھ نہ دیا گیا, اس کی بات نہیں مانی گئی, وہ اپنی بہت بڑی انسلٹ محسوس کرتا ہے. بڑے بڑے ایک بار کیا ہوا, ہمارے پاس ایک سمیلن ہو رہا تھا, سمیلن ہوا سنیاسیوں کا, منڈلیشوروں کا. اب ان کی سیٹ اگر ایک بھی نیچے اوپر ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کوئی کو تھوڑا سا نیچے کے آسن پر بٹھا دیا, کوئی کو اوپر کے آسن پر بٹھا دیا. تو ہماری دادی جی کو تو سب کے پاس بہت رسپیکٹ تھا, بہت سنیہ تھا, بلایا تھا پیار سے, اور اوم شانتی بھون میں سب کے لیے اوپر اسٹیج بنائی تھی ایسے اسٹیپ میں کہ سب جتنے منڈلیشور جتنے مہاتمائیں آئے ہیں سب یہاں پر آسن پر بیٹھیں گے. تو کوئی ہوگا پریچے کم ہوگا پتا نہیں, لیکن ایک کو تھوڑا سا نیچے کا آسن ملا اور اتنا اس کو غصہ آیا, بولا کچھ نہیں اور فٹافٹ تو تل ملا گیا کہ ہمارے سے جو چھوٹے گرو لوگ ہیں وہ اونچے آسن پر بیٹھے ہیں اور میرے کو یہاں بٹھا دیا گیا. وہ پھٹ سے غصے میں آ کر کے بھاگا اسٹیج سے اور اسٹیج سے بھاگ کر کے اور سکھ دھام میں ٹھہرایا تھا وہ جا کے کمرہ بند کر لیا, بھاگ کر کے گیا اور کمرہ بند کر کے اندر جا کے بیٹھ گیا. ہمارے جگدیش بھائی کو سب پتا تھا کہ ایسا ہوتا ہے, ان کو پتا چل گیا, وہ ناراض ہو گئے, مہاتما جی اب تو بڑا خیر نہیں, ہماری سمیلن سفل نہیں ہوگا. وہ گئے بھاگ کر کے پیچھے پیچھے دروازہ ٹھوکتے رہے, مہاتما جی آپ باہر آئے, ایک منٹ آپ سے بات کر. وہ دروازہ نہیں کھولے. پھر انہوں نے یکتی رچی, دادی جی کو سامنے لے آئے. دادی جی کو بولا, دادی جی ہماری کانفرنس فیل ہو جائے گی اگر ایک بھی ناراض ہو گیا تو, آپ چلو. دادی جی تو نرمان چت, کوئی اہنکار ہی نہیں. دادی جی آئی, بھیا مہاتما جی باہر نکلو, دادی آئی ہے آپ سے بات کرنے. اب مہاتما جی پگھلے تھوڑا نرم ہوئے, کیونکہ دادی کی آواز سنی کتنی بڑی ہیڈ سنستھا کی, وہ آ کر کے آئی ہے, مہاتما جی بھول ہو گئی سوری. دادی جی نے نمرتا سے اس کے ہاتھ جوڑے, کوئی بات نہیں, چلو آپ کو ہم پورے اس جو بھی آپ کو چاہیے جس آسن پر بیٹھنا بٹھاتے ہیں. منا منو کر کے دس منٹ پندرہ منٹ میں دادی اس کو پھر سے اسٹیج پر لے آئی, آ گیا. سب باتیں چلی, سب نے اپنے اپنے بھاشن کیے, بڑا اچھا ماحول بنا, بہت اچھی طرح سے. لاسٹ میں ایک بھوت پورو شنکراچاریہ جی آئے تھے, انہوں نے بھاشن شروع کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو ہماری دادیاں کتنی نرمان چیت ہیں, اپنا آسن چھوڑ کے نیچے بیٹھ جاتی, لیکن ہماری لوگوں میں, اپنے لوگوں میں, اپنا لوگ ایسے کہہ کر کے کہ اگر ان کو اونچا آسن نہ ملے تو پھٹ سے ناراض ہو جاتے, اور سب سے اونچا استھان جو چاہیے نا, انہوں نے نام لیا کہ کوا جو ہوتا ہے نا وہ جھاڑ کی اونچی چوٹی پر بیٹھتا ہے. کوا جو ہوتا ہے, کوئل جو ہوتی ہے وہ چھپ کر کے بیٹھتی ہے, وہ کوئی دکھائی نہیں دیتا, لیکن جو کوا ہوتا ہے وہ سب سے اونچا جو چوٹی ہوگی جھاڑ کی, اس چوٹی پر بیٹھ کے کاؤں کاؤں کرتا ہے. تو یہ منڈلی جو ہے شاید کوؤں کی ہے, ایسا بول دیا اس نے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم لوگ ایسے اتنی بڑی ڈگری ہے, اتنا بڑا سمان دے رہے ہیں اور ہم ایک چھوٹی سی بات پر اتنا ناراض ہو جائیں. تو بابا نے ہم سب کو اہم کو سماپت کیا, کتنی نرمان چیت آتمائیں بنائی ہے. آپ دیکھیں گے ہمارے پاس کوئی بھی بڑا آتا تھا, دادی جی اپنا آسن چھوڑ کے کہتی تھی مہاتما جی پہلے آپ بیٹھو, وہ نیچے ادھر دوسرے استھان پر بیٹھ جاتی. یہ نرمانتا اس یوگ سے آتی. اگر یہ نرمانتا نہیں ہے, نرہنکاریتا نہیں ہے, تو یوگ کا فائدہ کیا ہے, کس چیز کا یوگ کر رہے ہیں ہم. تو ایک اہم سماپت ہو جائے, اور دوسرا سب سے بڑی بیماری جو پتا ہے اس سمے کیا ہے, بہم کی, شنکا جس کو کہتے. اگر کسی بھی پریوار کے بیچ میں یہ بیماری گھس گئی تو شانتی نہیں رہ سکتی, رہے گی. شک کی بیماری بہت خطرناک ہے, اس کو کہتے ہیں انمان کی بیماری. انمان لگ گیا, لگا لیا, پتی نے پتنی پر انمان کر لیا اس کے سمبندھ ٹھیک نہیں ہے کسی کے ساتھ, پتنی نے اپنے پتی کے پر سوچ لیا شاید یہ ایسا کرتا ہوگا, کبھی بھی شانتی سے گھر میں نہیں رہ سکتا, روز ٹکر ہوتا رہے گا, خوشی غائب ہو جائے گی, سنسکار ملن ختم ہو جائے گا. اس لیے اس کو بابا نے بھی کہا ہے ایک مرلی کے اندر کہ اس بیماری کی دوائی جو ہے نا لقمان حکیم کے پاس بھی نہیں, بہت بڑا حکیم تھا, بھگوان کے پاس بھی نہیں ہے. اس لیے دھیان رکھنا, کبھی بھی کسی کے چرتر کی طرف دھیان نہیں دو, اس پرکار کے شک اور شنکا نہیں کرو. ہر آتما کا اپنا اپنا پارٹ ہے, اگر شک اور شنکا کریں گے تو ہمارا من سدا اشانت رہے گا, شانتی اور سکھ نہیں رہ سکتا. بابا نے ہمیں اہم اور بہم سے, آویش اور آویک سے مکت کیا, اور ساتھ ساتھ بابا کہتے ہیں ایک بہت سوکشم وکار ہے جو اس سمے براہمنوں کے اندر تو بالکل نہیں ہونا چاہیے, اور وہ یوگ میں بہت اٹیک کرتا ہے, آلس. مرلی سنتے سمے بھی آلس آتا ہے, بیٹھے ہیں تھوڑی دیر کے بعد شانت سروپ استھتی میں سنتے سنتے سو جائیں گے. بابا نے کہا ہے براہمنوں کا سب سے بڑا شترو, جیسے کام مہا شترو ہے, ایسے اس سمے آلس سے بہت بڑا شترو ہے, اس پر جیت پراپت کر لو. نندرا جیت بننا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں نیند نہیں کرو, نیند کے سمے نیند کرو، جب ٹائم ہے سو جاؤ۔ کئی لوگ 11-12 بجے تک جگتے ہیں، امرت ویلے اٹھیں گے مان لو زبردستی، تو کیا یوگ لگے گا؟ اس لیے بابا نے کہا ہے 10 تو بس، 10-10:30 کے بیچ میں سو جاؤ، اپنے آپ 5-4 گھنٹے میں نیند اچھی طرح سے پوری ہو جائے گی، آپ 3:30-4 کے بیچ میں اٹھ جائیں گے۔ شریر کو جتنی نیند کی ضرورت ہے اتنی دو، لیکن بہت الرٹ ہو کر کے یوگ ابھیاس کرو، اچھا چنتن دو۔ اگر ہم بابا کی یاد میں بیٹھے ہیں، یوگ میں بیٹھے ہیں، دھیان کر رہے ہیں اور من بھٹک رہا ہے، تو ایک پتر آیا دادی کے پاس، پتر آیا تو مجھے دادی نے دیا کہ دیکھو اس میں کیا لکھا ہے۔ تو ایک ماتا نے پتر لکھا، ماتا جی بھکتی کے اندر تھی اور ان کی بہو گیان میں تھی، دونوں سویرے اٹھ کر کے ایک پوجا پاٹ کرتی تھی اور ایک یوگ کرتی تھی۔ تو جو پوجا پاٹ کرنے والی ماتا جی تھی، وہ بڑے الرٹ ہو کر کے آرتی کرنا، اگربتی جلانا، دھیان کرنا بڑے پیار سے لگن سے کرتی تھی، اور جو یوگ سیکھ کے ماتا جی آتی تھی، ان کی بہو تھی، وہ بیٹھتی تھی تو تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد شانت سوروپ ہوتے ہوتے سو جاتی تھی۔ تو ساسو کو بڑا غصہ آتا تھا، کہتی تھی یہ کیا ہے، ان کا یوگ ہے، 2 منٹ بھی شانت نہیں بیٹھ سکتی، ایسے من کو ایکاگر نہیں کر سکتی۔ تو اس نے پتر لکھا دادی کو، دادی آپ کا یوگ کیا سکھایا جاتا ہے، کیا یہ شانتی سوروپ استھتی ایسی ہوتی ہے، ہم کو تو کبھی نیند نہیں آتی بھکتی میں، ہم تو بڑے پیار سے بھکتی کرتے۔ تو دھیان رکھنا کہ سامنے والے بہت نوٹ کرتے ہیں، ہم راج یوگی بابا کے بچے جو ملن منا رہے ہیں، پربھو ملن کا آنند ہے، اس آنند کے بیچ میں سستی کہاں سے آ گئی، آلس سے کہاں سے آ گیا؟ آلس سے تو تب اٹیک کرتا ہے جب آپ بالکل سنکلپوں کو شونیہ کی طرف لے جا رہے ہیں، اور ہماری اس راج یوگ کے اندر سنکلپوں کو دمن نہیں کیا جاتا، ہم ان سنکلپوں کو بہت شدھ پوتر بنا کر کے سنکلپ کے مادھیم سے بابا کے تک جاتے ہیں۔ سنکلپ ہماری شکتی ہے سب سے بڑی، اس شکتی کے آدھار سے کبھی آپ سوکشم وطن میں جاؤ، کبھی مول وطن میں جاؤ، کبھی اپنے بیکنٹھ کی دنیا کی سیر کرو، کبھی سنکلپ کی یاترا سے کہیں جا کے سیوا کر کے آؤ، دیش ودیش کسی استھان پر، سنکلپ ایک بہت بڑی شکتی ہے۔ اس لیے اچھے اچھے سنکلپ کریٹ کرو، شدھ سنکلپ کریٹ کرو، رچو، اور ان سنکلپوں کے آدھار سے بابا کے ساتھ بہت سنیہ سمپن استھتی میں بیٹھ کر کے سنکلپ سے بابا کو دیکھو، بابا سے باتیں کرو، اس گھر کا انوبھو کرو، اور وہ گھر کے انوبھو کو ساتھ لے کر کے پھر سنکلپوں سے چاروں اور پھیلاؤ، یہ یوگ ہے۔ وایو منڈل میں بھی وہ شانتی کے، سکھ کے، آنند کے پرکمپن پھیل جائیں۔ اگر یوگی کبھی، بابا کہتا ہے شریر بھی چھوڑتے تھے پرانے زمانے میں، تو چاروں طرف سناٹا ہو جاتا تھا، اور اتنے ہم سب یوگی کیا کرتے ہیں، پہلے تو ہم شریر کو چھوڑتے ہیں نا، یوگ میں کیا کرتے ہیں، اس دیہ بھان سے ڈیٹیچ ہوتے ہیں، ایک دم ڈیٹیچ ہو گئے، شریر سے الگ ہو گئے، اپنے سوستھ سوروپ میں استھت ہو گئے، تو یہ بھی جیسے شریر چھوڑ دیا، شریر کا کوئی بھان نہیں ہے، تو یہ واتاورن کے اندر شانتی کی، پوترتا کی، سکھ کی کرنیں پھیل جانی چاہیے۔ اگر 500 لوگ یہاں یوگ کر رہے ہیں، تو پورے شانتی ون کے اندر تو کم سے کم وہ شانتی کی، پوترتا کی کرنیں پھیلیں۔ ایک یوگی بیٹھتا تھا تو چاروں طرف سے دیکھو شیر چیتے سب چیزیں شانت ہو جاتی تھی، سب پشو پکشی ان کے چاروں طرف کٹیا کے آگے ایسے شانتی سے بیٹھ جاتے، اپنی ہنسک ورتی کو تیاگ دیتے تھے، اپنی ادنتا اور چنچلتا کو چھوڑ دیتے تھے، وہ بھی تپسیا تھی نا۔ ہم سب راجیوں کے اندر ایسی استھتی میں بیٹھے ہیں جو چاروں طرف سے شانتی کے، سکھ کے، آنند کے پرکمپن پھیلنے لگے، یہ ہے ہمارا راجیوگ۔ تو جتنا ہم ایکاگر چت ہو کر کے بابا کے پیار میں سما جائیں گے، اپنے 4 چیزیں ہیں ہمارے یوگ کے اندر، ایک سوسوروپ کی استھتی، سوسوروپ کو دیکھو، کیا ہوں میں، ایک لائٹ ہوں، میں ایک مائٹ ہوں، میں ایک چیتنیہ شکتی ہوں، میں اس پرکٹی آسن پر وراجمان ہوں، میں اس دیہ سے بھن ایک چیتنیہ ستا ہوں، پہلا سوروپ۔ दूसरा स्वरूप मेरा स्वधर्म शांति प्रेम आनंद पवित्रता, मेरा स्वधर्म निजी है। ये देह का धर्म मेरा धर्म नहीं है, मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं हूँ, मैं गुजराती मराठी पंजाबी नहीं हूँ, मैं तो एक चैतन्य आत्मा हूँ और मुझ आत्मा का स्वधर्म शांति है, प्रेम है, आनंद है, पवित्रता है। फिर अपने घर को देखूं, मैं कहां से सृष्टि मंच पर आई हूं। तीसरे स्वरूप में अपने घर को देखो जो सूर्य चांद तारा गणों से भी पार, जिसको कहते पार ब्रह्म परमेश्वर, जहां पर हमारा पिता निवास करता है, उस घर से ही हम इस सृष्टि मंच पर आए हैं। वो घर हमारा अखंड ज्योतिमय तत्व बहुत परम पवित्र है, बहुत अखंड शांतिमय है। उस घर को याद करो और उस घर की शक्तियों का अनुभव करो। और चौथे में फिर घर में जो हमारा पिता निवास करता है, ब्रह्म लोक का जो निवासी है, लोग तो कहते ब्रह्म ही भगवान है, कितना भ्रम पैदा कर दिया, ब्रह्म ही भगवान है। अरे रहने के स्थान को मालिक बना दिया जाए, स्थान को ही भगवान मान लिया। और बाबा ने कितना स्पष्ट ज्ञान दिया कि ब्रह्म लोक है, ब्रह्म एक घर है और उस घर में ब्रह्म लोक निवासी पिता ब्रह्मांड में रहता है, वो हमारा पिता परमात्मा है। वो ज्ञान सूर्य है, सर्व आत्माओं का पिता है। तो उस पिता परमात्मा को पहचान करके उसके रूप को देखते हुए उसमें मन को एकाग्र कर लो। तो ये चार चीजें हैं, स्वस्वरूप की स्मृति, स्वधर्म की स्मृति, स्वदेश की स्मृति और स्वपिता की स्मृति। जब उस स्वपिता की स्मृति में हम बैठ जाते हैं तो उस स्वपिता से हमें सब शक्तियां प्रदान होती मिल जाती और वो सब शक्तियां वातावरण में हम फैलाते हैं। तो राजयोगी वो है जो मन और बुद्धि को बहुत एकाग्र करके पिता परमात्मा के साथ संबंध जोड़ ले और उसकी शक्तियों को खुद ग्रहण करके फिर वायुमंडल में फैलाए, अपने जीवन को सुख शांति आनंद से संपन्न कर ले। ठीक है, तो ऐसा हम सबको योगी बनना है। सभी आप बाबा के बच्चे सब राजयोगी हैं, लेकिन इसको बहुत एकाग्रता के साथ, स्थिरता के साथ, लगन के साथ करके इस विश्व के कल्याण की सेवा करनी है, इस विश्व परिवर्तन के निमित्त बनना है। इससे दुख अशांति समाप्त हो जाए, उसके लिए हम सबको सच्चा सच्चा राजयोगी बनना है। ओम शांति।
की पा